بسم الله الرحمن الرحیم، ملفوظات حضرت مسیح موعود، 15 جنوری سن 1903، بوقت سیر. فرمایا، دعا بڑی عجیب چیز ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ نہ دعا کرانے والے آداب دعا سے واقف ہیں اور نہ اس زمانے میں دعا کرنے والے ان طریقوں سے واقف ہیں جو قبولیت دعا کے ہوتے ہیں. بلکہ اصل تو یہ ہے کہ دعا کی حقیقت ہی سے بالکل اجنبیت ہو گئی ہے. بعض ایسے ہیں جو سرے سے دعا کے منکر ہیں، اور جو دعا کے منکر تو نہیں مگر ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ چونکہ ان کی دعائیں بوجہ آداب دعا سے ناواقفیت کے قبول نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ دعا اپنے اصلی معنوں میں دعا ہوتی نہیں، اس لیے وہ منکرین دعا سے بھی گری ہوئی حالت میں ہیں. ان کی عملی حالت نے دوسروں کو تحریت کے قریب پہنچا دیا ہے. دعا کے لیے سب سے اول اس امر کی ضرورت ہے کہ دعا کرنے والا کبھی تھک کر مایوس نہ ہو جاوے اور اللہ تعالیٰ پر یہ سوئے ظن نہ کر بیٹھے کہ اب کچھ بھی نہیں ہوگا. بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ اس قدر دعا کی گئی کہ جب مقصد کا شگوفہ سر سبز ہونے کے قریب ہوتا ہے، دعا کرنے والے تھک گئے ہیں، جس کا نتیجہ ناکامی اور نامرادی ہو گیا ہے. اور اس نامرادی نے یہاں تک برا اثر پہنچایا کہ دعا کی تاثیرات کا انکار شروع ہوا، اور رفتہ رفتہ اس درجے تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ پھر خدا کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ اگر خدا ہوتا اور وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوتا تو اس قدر عرصہ دراز تک جو دعائیں کی گئیں کیوں کر قبول نہ ہوئیں. مگر ایسا خیال کرنے والا اور ٹھوکر کھانے والا انسان اگر اپنے عدم استقلال اور تلون کو سوچے تو اسے معلوم ہو جائے کہ ساری نامرادیاں اس کی اپنی ہی جلد بازی اور شتاب کاری کا نتیجہ ہے، جن پر خدا کی قوتوں اور طاقتوں کے متعلق بد ظنی اور نامراد کرنے والی مایوسی پڑ گئی. بس کبھی تھکنا نہیں چاہیے. دعا کی ایسی حالت ہے جیسے ایک ذمہ دار باہر جا کر اپنے کھیت میں ایک بیج بوتا ہے. اب بظاہر تو یہ حالت ہے کہ اس نے اچھے بھلے اناج کو مٹی کے نیچے دبا دیا. اس وقت کوئی کیا سمجھ سکتا ہے کہ یہ دانا ایک عمدہ درخت کی صورت میں نشو و نما پا کر پھل لائے گا. باہر کی دنیا اور خود ذمہ دار بھی نہیں دیکھ سکتا کہ یہ دانا اندر ہی اندر زمین میں ایک پودا کی صورت اختیار کر رہا ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد وہ دانا گل کر اندر ہی اندر پودا بننے لگتا ہے اور تیار ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا سبزہ اوپر نکل آتا ہے اور دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. اب دیکھو، وہ دانا جس وقت سے زمین کے نیچے ڈالا گیا تھا، دراصل اسی ساتھ سے وہ پودا بننے کی تیاری کرنے لگ گیا تھا، مگر ظاہر بین نگاہ اس سے کوئی خبر نہیں رکھتی. اور اب جب کہ اس کا سبزہ باہر نکل آیا تو سب نے دیکھ لیا، لیکن ایک نادان بچہ اس وقت تک یہ نہیں سمجھ سکتا کہ اس کو اپنے وقت پر پھل لگے گا. وہ یہ چاہتا ہے کیوں اسی وقت اس کو پھل نہیں لگتا، مگر عقل مند ذمہ دار خود سمجھتا ہے کہ اس کے پھل کا کون سا موقع ہے. وہ صبر سے اس کی نگرانی کرتا اور غور و برداشت کرتا رہتا ہے، اور اس طرح پر وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب اس کو پھل لگتا ہے اور وہ پک بھی جاتا ہے. یہی حال دعا کا ہے، اور بیان اسی طرح دعا نشو نما اور مثمر ثمرات ہوتی ہے. جلد باز پہلے تھک کر رہ جاتے ہیں، اور صبر کرنے والے مال اندیش استقلال کے ساتھ لگے رہتے ہیں اور اپنے مقصد کو پا لیتے ہیں. یہ سچی بات ہے کہ دعا میں بڑے بڑے مراحل اور مراتب ہیں، جن کی ناواقفیت کی وجہ سے دعا کرنے والے اپنے ہاتھ سے محروم ہو جاتے ہیں. ان کو ایک جلدی لگ جاتی ہے اور وہ صبر نہیں کر سکتے، حالانکہ خدا تعالیٰ کے کاموں میں ایک تجریز ہوتی ہے. دیکھو، یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آج انسان شادی کرے تو کل کو اس کے گھر بچہ پیدا ہو جاوے، حالانکہ وہ قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، مگر جو قانون اور نظام اس نے مقرر کر دیا ہے وہ ضروری ہے. پہلے نباتات کی نشو و نما کی طرح کچھ پتہ نہیں لگتا، 4 مہینے تک کوئی یقینی بات نہیں کہہ سکتا، پھر کچھ حرکت محسوس ہونے لگتی ہے، اور پوری میعاد گزرنے پر بہت بڑی تکالیف برداشت کرنے کے بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے. بچے کا پیدا ہونا ماں کا بھی ساتھ ہی پیدا ہونا ہوتا ہے. مرد شاید ان تکالیف اور مصائب کا اندازہ نہ کر سکیں جو اس مدت حمل کے درمیان عورت کو برداشت کرنی پڑتی ہیں، مگر یہ سچی بات ہے کہ عورت کی بھی ایک نئی زندگی ہوتی ہے. اب غور کرو کہ اولاد کے لیے پہلے ایک موت خود اس کو قبول کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر وہ اس خوشی کو دیکھتی ہے. اسی طرح پر دعا کرنے والے کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ تلون اور عجلت کو چھوڑ کر ساری تکلیفوں کو برداشت کرتا رہے، اور کبھی بھی یہ وہم نہ کرے کہ دعا قبول نہیں ہوئی. آخر آنے والا زمانہ آ جاتا ہے، دعا کے نتیجے کے پیدا ہونے کا وقت پہنچ جاتا ہے، جبکہ گویا مراد کا بچہ پیدا ہوتا ہے. دعا کو پہلے ضروری ہے کہ اس مقام اور حد تک پہنچایا جاوے जहां पहुंचकर वो नतीजा खेज साबित होती है। जिस तरह पर आपसी शीशे के नीचे कपड़ा रख देते हैं और सूरत की शुआएं शीशे पर आकर जमा होती हैं और उनकी हरारत और हिद्दत इस मकाम तक पहुंच जाती है जो इस कपड़े को जला दे, फिर यकायक वो कपड़ा चल उठता है। इस तरह पर जरूरी है कि दुआ उस मकाम तक पहुंचे जहां उसमें वो कुव्वत पैदा हो जावे कि ना मुरादियों को जला दे और मकसद मुराद को पूरा करने वाली साबित हो जावे। मुद्दत दराज तक इंसान को दुआओं में लगा रहना चाहिए। आखिर खुदा ताला जाहिर कर देता है, मैंने अपने तजर्बे से देखा है और गुज़श्ता रास्तबाजों का तजर्बा भी इस पर शहादत देता है कि अगर किसी मामला में देर तक खामोशी करे तो कामयाबी की उम्मीद होती है, लेकिन जिस अम्र में जल्द जवाब मिल जाता है वो होने वाला नहीं होता। आमतौर पर हम दुनिया में देखते हैं कि एक शायर जब किसी के दरवाजे पर मांगने के लिए जाता है और नहायत इस्तराब और आजिज़ी से मांगता है और कुछ देर तक चिड़कियां खाकर भी अपनी जगह से नहीं हटता और सवाल किए ही जाता है, तो आखिर उसको भी कुछ शर्म आ ही जाती है। खाक कितना ही बकील क्यों ना हो, फिर भी कुछ ना कुछ साहिल को दे ही देता है। तो क्या दुआ करने वाले का एक मामूली साहिल जितना भी इस्तकलाल नहीं होना चाहिए? खुदा ताला जो करीम है और हया रखता है, जब देखता है कि उसका आजिज बंदा एक अरसे से उसके आस्ताने पर गिरा हुआ है तो कभी उसका अंजाम बद नहीं करता। जैसे एक हामिल औरत 4-5 माह के बाद कहे कि अब बच्चा पैदा क्यों नहीं होता और इस ख्वाहिश में कोई मुस्कित दवाई खा ले तो उस वक्त क्या बच्चा पैदा होगा, या एक मायूसी बख्श हालत में वो खुद मुबतला होगी। इसी तरह जो शख्स कबल अज़ वक्त जल्दी करता है वह नुकसान ही उठाता है, और ना निरा नुकसान बल्कि ईमान को भी सदमा पहुंच जाता है। बाद ऐसी हालत में डहरिया हो जाते हैं। हमारे गांव में एक नज्जार था, उसकी बीवी बीमार हुई और आखिर वो मर गई। उसने कहा कि अगर खुदा होता तो मैंने इतनी दुआएं की थी वो कबूल हो जाती और मेरी औरत न मरती। इस तरह पर वो डहरिया हो गया, लेकिन शहीद अगर अपने सिद्क और इखलास से काम ले तो इसका ईमान बढ़ता और सब कुछ हो भी जाता है। जमीन की दौलतें खुदा ताला के आगे क्या चीज हैं, वो एकदम में सब कुछ कर सकता है। क्या देखा नहीं कि उसने उस कौम को जिसको कोई जानता भी ना था बादशाह बना दिया और बड़ी बड़ी सल्तनतों को उनका ताबे फरमान बना दिया और गुलामों को बादशाह बना दिया। इंसान अगर तकवा इख्तियार करे खुदा ताला का हो जावे तो दुनिया में आला दर्जे की जिंदगी हो, मगर शर्त यही है कि सादिक और जमा मर्द होकर दिखाए दिल मुतजलजल ना हो और उसमें कोई आमेज़श रियाकारी व शिर्क की ना हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम में वो क्या बात थी जिसने उसको अबुल मिल्लत और अबुल हुनफा करार दिया और खुदा ताला ने उसको इस कदर अजीम शान बरकतें दी कि शुमार में नहीं आ सकती। यही सिद्क और इखलास था। देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक दुआ की थी कि उसकी औलाद में से अरब में एक नबी हो, फिर क्या वो उसी वक्त कबूल हो गई? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद एक अरसा दराज तक किसी को ख्याल भी नहीं आया कि इस दुआ का क्या असर हुआ, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत की सूरत में वो दुआ पूरी हुई और फिर किस शान के साथ पूरी हुई। फरमाया जाहिरी नमाज और रोजा अगर उसके साथ इखलास और सिद्क ना हो गोई खूबी अपने अपनी जगह बड़ी बड़ी रियासतें करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि उनमें से बास अपने हाथ तक सुखा देते हैं और बड़ी बड़ी मशक्कतें उठाते हैं और अपने आप को मुश्किल और मसाइल में डालते हैं, लेकिन ये तकालीफ उनको कोई नूर नहीं बख्शती और ना कोई सकीनत और इत्मीनान उनको मिलता है, बल्कि अंदरूनी हालत उनकी खराब होती है। वो बदनी रियाजत करते हैं जिसको अंदर से कम ताल्लुक होता है और कोई असर उनकी रूहानियत पर नहीं पड़ता। इसलिए कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने यह फरमाया, लन यनालुल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालु तक्वा मिनकुम, अलहज आयत 38। यानी अल्लाह ताला को तुम्हारी कुर्बानियों का गोश्त और खून नहीं पहुंचता बल्कि तकवा पहुंचता है। हकीकत में खुदा ताला पोस्ट को पसंद नहीं करता बल्कि मगज चाहता है। अब सवाल यह होता है कि अगर गोश्त और खून नहीं पहुंचता बल्कि तकवा पहुंचता है तो फिर कुर्बानी करने की क्या जरूरत है? और इस तरह नमाज रोजा अगर रूह का है तो फिर जाहिर की क्या जरूरत है? इसका जवाब यही है कि ये बिल्कुल पक्की बात है कि जो लोग जिस्म से खिदमत लेना छोड़ देते हैं उनको रूह भी नहीं मानती और उसमें वह नियाजमंदी और अबूदियत पैदा नहीं हो सकती जो असल मकसद है, और जो सिर्फ जिस्म से काम लेते हैं रूह को इसमें शरीक नहीं करते वो भी खतरनाक गलती में मुब्तला है और ये जोगी इसी किस्म के हैं। रूह और जिस्म का बाम खुदा ताला ने एक ताल्लुक रखा हुआ है और जिस्म का असर रूह पर पड़ता है। मसलन अगर एक शख्स तकल्लुफ से रोना चाहे तो आखिर उसको रोना आ ही जाएगा और ऐसे ही जो तकल्लुफ से हंसना चाहे उसे हंसी आ ही जाती है। इसी तरह पर नमाज की जिस कदर हालतें जिस्म पर वारिद होती हैं, मसलन खड़ा होना या रुकू करना, इसके साथ ही रूह पर भी असर पड़ता है और जिस कदर जिस्म में नियाजमंदी की हालत दिखाता है इसी कदर रूह में पैदा होती है। अगरचे खुदा निरे सजदे को कबूल नहीं करता, मगर सजदे को रूह के साथ एक ताल्लुक है। इसलिए नमाज में आखिरी मकाम सजदे का है। जब इंसान नियाजमंदी के इंतहाई मकाम पर पहुंचता है तो उस वक्त वो सजदा ही करना चाहता है। जानवरों तक में भी ये हालत मुशाहदा की जाती है। कुत्ते भी जब अपने मालिक से मोहब्बत करते हैं तो आकर उसके पाँव पर अपना सर रख देते हैं और अपनी मोहब्बत के ताल्लुक का इजहार सजदे की सूरत में करते हैं। इससे साफ पाया जाता है कि जिस्म को रूह के साथ एक खास ताल्लुक है। ऐसे ही रूह की हालतों का असर जिस्म पर नमूदार होता है। जब रूह गमनाक हो तो जिस्म पर भी इसके आसार जाहिर होते हैं और आंसू और पसमुर्दगी जाहिर होती है। अगर रूह और जिस्म का पाम ताल्लुक नहीं तो ऐसा क्यों होता है? दौरान खून भी कल्ब का एक काम है, मगर इसमें भी शक नहीं कि कल्ब आपाशीय जिस्म के लिए एक इंजन है और उसके पस्त और कब्ज से सब कुछ होता है। अगर जिस्मानी और रूहानी सिलसिले दोनों बराबर चलते हैं, रूह में जब आजजी पैदा हो जाती है फिर जिस्म में भी पैदा हो जाती है। इसलिए जब रूह में वाकई में आजजी और नियाजमंदी हो तो जिस्म में उसके आसार खुद ब खुद जाहिर हो जाते हैं, और ऐसा ही जिस्म पर एक अलग असर पड़ता है तो रूह भी इसे मुतासर हो ही जाती है। इसलिए जरूरी है कि जब खुदा ताला के हजूर नमाज में खड़े हो तो चाहिए कि अपने वजूद से आजिजी और इरादमंदी का इजहार करो। अगरचे उस वक्त ये किस्म का निफाक होता है, मगर रफ्ता रफ्ता उसका असर दायमी हो जाता है और वाकई रूह में वो नियाजमंदी और फरोतनी पैदा होने लगती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलफूजात हजरत मसीह माऊद। 15 जनवरी सन 1903। फरमाया, बाज़ लोग कहते हैं कि हमको नमाजों में लज्जत नहीं आती, मगर वो नहीं जानते कि लज्जत अपने इख्तियार में नहीं है और लज्जत का मेयार भी अलग है। ऐसा होता है कि एक शख्स अशद दर्जे की तकलीफ में मुब्तला होता है, मगर इस तकलीफ को भी लज्जत ही समझ लेता है। देखो, ट्रांसवाल, उस वक्त ट्रांसवाल की जंग जारी थी। इसमें जो लोग लड़ते हैं बावजूदे के, इसमें जानें जाती हैं और औरतें बेवा और बच्चे यतीम होते हैं, मगर कौमी अमीयत और पासदारी उनको एक लज्जत और सरूर के साथ मौत के मुंह में ले जा रही है। उनकी कौमी अमीयत और पासदारी मौत के मुंह में खुशी के साथ ले जाती है। इधर कौम उनकी मेहनतों और जाफशानियों की कदर कर रही है, जबकि अगराज कौमी मुत्तहिद हैं। फिर उनकी मेहनतों की कदर क्यों होती है? उनके दुख और तकालीफ की वजह से, उनकी मेहनत और जामशानी के पाए। गरज सारी लज्जत और राहत दुख के बाद आती है। इसीलिए कुरान शरीफ में यह कायदा बताया, इन्ना माअल उसरे युसरन, सूरह अलम नशरा आयत 7। अगर किसी राहत से पहले तकलीफ नहीं तो वो राहत राहत ही नहीं रहती। इसी तरह पर जो लोग कहते हैं कि हमको इबादत में लज्जत नहीं आती, उनको पहले अपनी जगह सोच लेना जरूरी है कि वह इबादत के लिए किस कदर दुख और तकालीफ उठाते हैं। जिस कदर दुख और तकालीफ इंसान उठाएगा, वही तब्दील सूरत के बाद लज्जत हो जाता है। मेरी मुराद उन दुखों से नहीं कि इंसान अपने आप को बेजा मशक्कतों में डाले और माला युताक तकालीफ उठाने का दावा करे। कुरान शरीफ में ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसाहा, अल-बकरा आयत 87 आया है, और रबानियत इस्लाम में नहीं है, जिसमें पढ़कर इंसान अपने हाथ सुखा ले या अपनी दूसरी कुव्वतों को बेकार छोड़ दे या और किस्म किस्म की तकालीफ शदीदा में अपनी जान को डाले। इबादत के लिए दुख उठाने से हमेशा ये मुराद होती है कि इंसान उन कामों से रुके जो इबादत के लज्जत को दूर करने वाले हैं, और उनसे रुकने में अवलन ऐसी जरूर तकलीफ महसूस होगी और खुदा ताला के नारजामंदियों से परहेज करे। मसलन, एक चोर है, उसको जरूरी है कि वो चोरी छोड़े। बदकार है तो बदकारी और बदनजरी को छोड़े। इसी तरह नशों का आदी है तो उनसे परहेज करे। अब जब वो अपने महबूब अशिया को तर्क करेगा तो जरूर है कि अव्वल अव्वल सख्त तकलीफ उठावे, मगर रफ्ता रफ्ता अगर इस्तिक़लाल से वो उस पर कायम रहेगा तो देख लेगा कि इन बदियों के छोड़ने में जो तकलीफ उसको महसूस होती है, वो तकलीफ एक अब एक लज्जत का रंग इख्तियार करती जाती है, क्योंकि इन बदियों के बिल मुकाबिल नेकियां आती जाएंगी और उनके नेक नतायज जो सुख देने वाले हैं वो भी साथ ही आएंगे, यहाँ तक कि वो अपने हर कौल व फेल में जब खुदा ताला ही की रजा को मुकदम कर लेगा और उसकी हर हरकत और सुकून अल्लाह ही के अम्र के नीचे होगी, तो साफ और बयान तौर पर वो देखेगा कि पूरे इत्मीनान और सकीनत का मजा ले रहा है। ये वो हालत होती है जब कहा जाता है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, सूरह बकरा आयत 63। इसी मकाम पर अल्लाह ताला की वलायत में आता है और जुलमात से निकल कर दूर की तरफ आ जाता है और जुलमात से निकल कर नूर की तरफ आ जाता है। याद रखो कि जब इंसान खुदा ताला के लिए अपने महबूब चीज़ों को जो खुदा के नज़र में मकरूह और उसके मंशा के मुखालिफ होती हैं छोड़कर अपने आप को तकालीफ में डालता है, तो ऐसी तकालीफ उठाने वाले जिस्म का असर रूह पर भी पड़ता है और वो भी इसे मुतासर होकर साथ ही साथ अपनी तब्दीली में लगती है, यहाँ तक कि कामिल न्याजमंदी के साथ आस्तान अलूहियत और बेख्तियार होकर गिर पड़ती है। ये तरीक है इबादत में लज्जत हासिल करने का। तुमने देखा होगा कि बहुत से लोग हैं जो अपनी इबादत में लज्जत का ये तरीक समझते हैं कि कुछ गीत गा लिए या बाजे बजा लिए और यही उसकी इबादत होगी। इसे धोखा मत खाओ, ये बातें नफ्स की लज्जत का बायस हों तो हों मगर रूह के लिए इनमें लज्जत की कोई चीज नहीं, उनसे रूह में फरोतनी और इनकसारी के जौहर पैदा नहीं होते और इबादत का असल मंशा गुम हो जाता है। तवायफ की महफिलों में भी एक आदमी ऐसा मजा हासिल करता है तो क्या वो इबादत की लज्जत समझी जाती है? ये बारीक बात है जिसको दूसरी कौमें समझ नहीं सकती क्योंकि उन्होंने इबादत की असल गरज और गायत को समझा ही नहीं। फरमाया कुरान शरीफ से पहले दो कौमें थीं, एक ब्रह्मा कहलाती थी जो रबानियत को पसंद करती थी और अपनी जिंदगी का असल मंशा यही समझ बैठे हुए थे। ईसाई कौम में भी ऐसे लोग थे जो राय बोना पसंद करते थे और होते थे। रोमन कैथोलिक ईसाइयों में अब तक ऐसे लोग मौजूद हैं और ये तरीक उनमें जारी है कि वो राहबाना जिंदगी बसर करते हैं, मगर अब उनके राहबानियत इस हद तक ही है कि वो शादी नहीं करते वरना हर तरह ऐशो इशरत और आराम के साथ कोठियों में रहते और मुकल्लफ लिबास पहनते और उम्दा खाना खाते हैं और जिस किस्म की जिंदगी वो बसर करते हैं आम लोग जानते हैं। मगर मेरी मुराद राहबानियत से इस वक्त यही है कि वो फिरका जो अपने आप को तहजीब बदन में डालता था और दूसरा फिरका उनके मुकाबले वो था जो इबादत की जिंदगी बसर करता था। इस्लाम जब आया तो उसने इन दोनों को तरक किया और सिरात मुस्तकीम को इख्तियार किया। उसने बताया इंसान रहबानियत इख्तियार करे जिससे वह नफ्स खुश हो जाए और खुदा कार छोड़ दे और इस तरह पर उन अखलाक फाजला के हसूल से महरूम हो जावे जो इन कुव्वतों के अंदर वदियत किए गए हैं, क्योंकि ये सच्ची बात है कि जिस कदर कुव्वतें इंसान को दी गई हैं ये सब की सब दरअसल अखलाकी कुव्वतें हैं। गलत इस्तेमाल की वजह से अखलाक बद अखलाकियों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, इसलिए इस्लाम ने रहबानियत से मना किया और फरमाया कि ला रहबानियत फिल इस्लाम। इस्लाम चूंकि इंसान की कामिल तरबियत चाहता है और उसकी सारी कुव्वतों का नश्व नुमा उसका मकसद है, इसलिए उसने जायज नहीं रखा कि वो तरीके इख्तियार किया जावे जो इंसान की बेहरमती करने वाला और खुदा ताला की तौहीन करने वाला ठहर जावे। और फिर इस्लाम का मंशा यह है कि वह इंसान को इफरात और तफरीत के राहों से उस एतदाल के राह पर चलावे जो सिरात मुस्तकीम है। इसलिए उसने इबादत के मसले की भी तरदीद की। जो दूसरा फिरका था जो कुरान शरीफ से पहले मौजूद था वो सब कुछ जायज समझता था और आजादी और बेकैदी में अपनी जिंदगी बसर करता था, सारी राहतों और लज्जतों के मेराज समझता था, मगर इस्लाम ने उसको रद्द किया और इंसान को बेकैद बनाना ना चाहा कि वह नमाज की जरूरत समझे न रोजे की, गरज किसी पाबंदी के नीचे ही न रहे और एक वाशी जानवर की तरह मारा मारा फिरे। अब तक भी ये लोग मौजूद हैं, वो वजूदी मजहब जो बदकिस्मती से फैला हुआ है दरअसल एक इबादत ही फिरका है और नमाज रोजे की कोई जरूरत नहीं समझता और ममनुआत और मुहर्रमात से परहेज नहीं करता, इसीलिए इस्लाम ने यह भी जायज न रखा। रबानियत और इबादत इंसान को इस शिद्क और वफा से दूर रखते थे जो इस्लाम पैदा करना चाहता है, इसलिए उनसे अलग रखकर इताअत इलाही का हुक्म देकर शिद्क और वफा की तालीम दी जो सारी रूहानी लज्जतों की जाजिब हैं। ये बात भी याद रखने के काबिल है कि जो शख्स किसी सहारे पर चलता है वो सुस्तुल वजूद और कायल होता है। जैसे बच्चे अपने वालिदैन की सरपरस्ती के नीचे अपनी फिक्रे माश या जरूरत के पैदा करने से कायल और लापरवाह होते हैं, या ईसाई लोग जिस तरह पर आमाल में मुस्तैद नहीं हो सकते, क्योंकि कफारे का मसला, जब उनको ये तालीम देता है कि मसीह ने उनके सारे गुनाह उठा लिए, पर समझ ही नहीं आता कि वो कौन सी चीज हो सकती है जो उनको आमाल की तरफ मुतवज्जे करे। आमाल का मुताद तो नजात है, और ये उनको बिला मशक्कत मेहनत सिर्फ खूनी मसीह पर इतना ही ईमान रखने से कि वो हमारे लिए मर गया, हमारे गुनाहों के बदले लानते हुआ मिल जाती है। तो अब नजात के सवा और क्या चाहिए? फिर उनको आमाल हसना की जरूरत क्या बाकी रही? अगर कफारे पर ईमान लाकर भी नजात का खतरा और अंदेशा बाकी है, तो ये अमरे दीगर है कि अमाल किए जाएं। लेकिन अगर नजात खूने मसीह के साथ ही वाबस्ता है, तो कोई अकलमंद नहीं मान सकता कि फिर जरूरत अमाल क्या बाकी है। रवाफिज भी सहारे पर ही चलते हैं, और अपनी जगह ईसाइयों की तरह इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के खून को अपने नजात का जरिया समझते हैं। उनके नजदीक अगर अमाल की जरूरत है, तो वक्त इतनी कि उनके मसायब को याद करके आंखों से आंसू गिरा ले, या कोई सीना को भी कर ली। सारे आमाले हसना के रूह यही बारी और सीना को भी है, मगर मैं नहीं समझता कि उसको नजात से क्या ताल्लुक। इसलिए मैं ये तालीम कभी देना नहीं चाहता, और ना इस्लाम ने दी कि तुम अपने गुनाहों की गठरी किसी दूसरे की गर्दन पर लाद दो और खुद इबाहत की जिंदगी बसर करो। कुरान शरीफ ने साफ फैसला कर दिया है, ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्रा उख़रा, अल-अन्आम आयत 162। एक दूसरे का बोझ नहीं उठा सकता, और ना दुनिया में उसकी कोई नजीर खुदा ताला के आम कानून कुदरत में मिलती है। कभी नहीं देखा जाता कि जैद मसलन संखिया खा लेवे, और इस संखिया के असर बकर पर हो जावे और वह मर जावे, या एक मरीज हो और दूसरे आदमी के दवा खा लेने से वह अच्छा हो जावे, बल्कि हर एक बजाय खुद मुतासिर होगा। फिर ये क्यों कर मुमकिन है कि एक शख्स सारी उम्र गुनाह करता रहे, और दिलेरी के साथ खुदा ताला के अकाम के खिलाफ वर्जी करता रहे, और लिख दे कि मेरे गुनाहों का बोझ दूसरे शख्स की गर्दन पर है? जो शख्स ऐसी उम्मीद करता है, वो दिमाग बेहुदा पुख्त ख्याल बातिल बस कम इज्दाक है। बस इस्लाम किसी सहारे पर रखना नहीं चाहता, क्योंकि सहारे पर रखने से इब्ताल आमाल लाजम आ जाता है। लेकिन जब इंसान सहारे के बगैर जिंदगी बसर करता है, और अपने आप को जिम्मेदार ठहराता है, उस वक्त उसको आमाल की जरूरत पड़ती है, और कुछ करना पड़ता है। इसलिए कुरान शरीफ ने फरमाया है, कद अफलाह मन जक्का, सूरह शम्स आयत 10। फलाह वही पाता है जो अपना तस्किया करता है। खुद अगर इंसान हाथ पांव ना हिलाए, तो बात नहीं बनती, मगर इससे यह हरगिज ना समझना चाहिए कि शफात कोई चीज नहीं। हमारा ईमान है कि शफात हक है, और इस पर यह नस्से सरी है, सल्ले आलैम इन्ना सलात का सकन लहुम अत्तौबा आयत 103। ये शफात का फलसफा है, यानी जो गुनाहों में नफसानियत का जोश है वो ठंडा पड़ जावे। शफात का नतीजा ये बताया है कि गुनाहों की जिंदगी पर एक मौत वारद हो जाती है, और नफसानी जोशों और जज्बात में एक प्रुदत आ जाती है, जिससे गुनाहों का सदूर बंद होकर उनके बिलमुकाबल नेकियां शुरू हो जाती हैं। पर शफात के मसले ने आमाल को बेकार नहीं किया, बल्कि आमाल हसना की तारीख की है। शफात के मसले के फलसफे को न समझ कर आमकों ने एतराज किया है, और शफात और कफारे को एक करार दिया। हालांकि ये एक नहीं हो सकते। कफारा आमाल हसना से मुस्तगनी करता है, और शफात आमाल हसना की तारीख। जो चीज अपने अंदर फलसफा नहीं रखती, वो हेच है। हमारा ये दावा है कि इस्लामी असूल और अकायद और सिहार तालीम अपने अंदर एक फलसफा रखती है, और इल्मी पराया इसके साथ मौजूद है, जो दूसरे मजाहब के अकायद में नहीं मिलता। शफात आमाल हसना के मुहर्रिक किस तरह पर है? इस सवाल का जवाब भी कुरान शरीफ से मिलता है, और साबित होता है कि वो कफारे का रंग अपने अंदर नहीं रखती, क्योंकि उस पर असर नहीं किया जिससे कायली और सुस्ती पैदा होती है। बल्कि फरमायाबकर, यानी जब मेरे बंदे मेरे बारे में तो सवाल करें कि वो कहाँ है, तो कह दे कि मैं करीब हूं। करीब वाला तो सब कुछ कर सकता है, दूर वाला क्या करेगा? अगर आग लगी हुई हो, तो दूर वाले को जब तक खबर पहुंचे, उस वक्त तक तो शायद वो जलकर खाके स्याह भी हो चुके। इसलिए फरमाया कि कह दो मैं करीब हूं। बस ये आयत भी कबूलियत दुआ का एक राज बताती है, और वो ये है कि अल्लाह ताला की कुदरत और ताकत पर एक ईमान कामिल पैदा हो, और उसे हर वक्त अपने करीब यकीन किया जावे। बहुत सी दुआओं के रद्द होने का ये भी सिर है कि दुआ करने वाला अपनी ज़ईफ़ुल ईमानी से दुआ को मुस्तरद करा लेता है। इसलिए ये जरूरी है कि दुआ को कबूल होने के लायक बनाया जावे, क्योंकि अगर वो दुआ खुदा ताला की शरायत के नीचे नहीं है, तो फिर उसको खास सारे नबी भी मिलकर करें तो कबूल ना होगी, और फायदा और नतीजा उस पर मुरतब नहीं हो सकेगा। अब ये बात सोचने के काबिल है कि एक तरफ तो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया सल्ले अलैहिम इन्ना सलातक सकनुन लहुम अत्तावा आयत 103, तेरी सलात से उनको ठंड पड़ जाती है और जोश और जज्बात की आग सर्द हो जाती है। दूसरी तरफ फल यस्तजीबू ली अल बकरा आयत 87 का भी हुक्म फरमाया। इन दोनों आयतों के मिलाने से दुआ करने और कराने वाले के ताल्लुकात, फिर इन ताल्लुकात से जो नतायज पैदा होते हैं उनका भी पता लगता है, क्योंकि सिर्फ इसी बात पर मुनहसर नहीं कर दिया कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और दुआ काफी है और खुद कुछ ना किया जावे, और ना यही फलाह का बायस हो सकता है कि आ हजरत की शफाअत और दुआ की जरूरत ही ना समझी जावे। गरज ना इस्लाम में रहबानियत है, ना बेकार नशीनी का सबक, बल्कि इन इफरात और तफरीत के राहों को छोड़कर वो सिरात मुस्तकीम की हिदायत तक। हजरत अकदस ने इरशाद फरमाया, खुदा तआला का कुर्ब हासिल करने की राह यह है कि उसके लिए सिद्क दिखाया जावे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्ब हासिल किया तो उसकी वजह यही थी। चुनाचे फरमाया है, वह इब्राहिम अल्लज़ी वफा, सूरह नज़्म आयत 38। इब्राहिम वह इब्राहिम है जिसने वफादारी दिखाई। खुदा ताला के साथ वफादारी और सिद्क और इखलास दिखाना एक मौत चाहता है, जब तक इंसान और उसकी सारी लज्जतों और शौकतों पर पानी फेर देने को तैयार न हो जावे और हर जिल्लत और सख्ती और तंगी खुदा के लिए गवारा करने को तैयार ना हो, ये सिफत पैदा नहीं हो सकती। बुत परस्ती यही नहीं कि इंसान किसी दरख्त या पत्थर की परस्तिश करे, बल्कि हर एक चीज जो अल्लाह ताला के कुर्ब से रोकती और उस पर मुकदम होती है वो बुत है, और इस कदर बुत इंसान अपने अंदर रखता है कि उसको पता भी नहीं लगता कि मैं बुत परस्ती कर रहा हूं। पर जब तक खालिस खुदा ताला ही के लिए नहीं हो जाता और उसके राह में हर मुसीबत की बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होता, सिद्क और इखलास का रंग पैदा होना मुश्किल है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो ये खिताब मिला, इब्राहिम अल्लज़ी वफा की आवाज उस वक्त आई जबकि वो बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो गया। अल्लाह ताला अमल को चाहता और अमल ही से राजी होता है, और अमल दुख से आता है, लेकिन जब इंसान खुदा के लिए दुख उठाने को तैयार हो जावे तो खुदा ताला उसको दुख में भी नहीं डालता। देखो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला के हुक्म की तामील के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर देना चाहा और पूरी तैयारी कर ली तो अल्लाह ताला ने उसके बेटे को बचा लिया। वो आग में डाले गए लेकिन आग उन पर कोई असर न कर सकी। अल्लाह ताला की राह में तकलीफ उठाने को तैयार हो जावे तो खुदा ताला तकालीफ से बचा लेता है। हमारे हाथ में जिस्म तो है, रूह नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि रूह का ताल्लुक जिस्म से है और जिस्मानी अमूर का असर रूह पर जरूर होता है। इसलिए यह कभी ख्याल न करना चाहिए कि जिस्म से रूह पर कोई असर नहीं पड़ता। जिस कदर आमाल इंसान से होते हैं वह इसी मुरक्कब सुर से होते हैं। अलग जिस्म या अकेली रूह कोई नेक या बद अमल नहीं करती। यही वजह है कि जजा सजा में भी दोनों के मुतालिकात का लिहाज रखा गया है। बाज लोग इसी राज को ना समझने की वजह से एतराज कर देते हैं कि मुसलमानों का बहिष्ट जिस्मानी है, हालांकि वो इतना नहीं जानते जब आमाल के सदूर में जिस्म साथ था तो जजा के वक्त अलग क्यों किया जावे। गरज यह है कि इस्लाम ने इन दोनों तरीकों को, ये इफरात और तफरीत के छोड़कर एतदाल की राह बताई है। ये दोनों खतरनाक बातें हैं, इनसे परहेज करना चाहिए। मुजर्रद तहजीब जिस्म से कुछ नहीं बनता और माज आराम तलबी से भी कोई नतीजा पैदा नहीं होता। एक मरतबा एक शख्स मेरे पास नूर मोहम्मद नाम टांडा से आया था। उसने कहा कि गुलाम महबूब सुबहानी ने वली होने का सर्टिफिकेट दे दिया है। अब विलायत का मेयार यही रह गया है कि गुलाम महबूब या किसी ने सर्टिफिकेट दे दिया, हालांकि विलायत मिलती नहीं जब तक इंसान खुदा के लिए मौत इख्तियार करने के लिए तैयार ना हो जावे। दुनिया में बहुत से लोग इसी किस्म के हैं जिनको कुछ भी मालूम नहीं कि वो दुनिया में क्यों आए हैं, हालांकि यही पहला सवाल है जिसको इसे हल करना चाहिए। खुद शनासी के बाद खुदा शनासी पैदा होती है। जब वो अपने फराइज को समझता है और मकासद जिंदगी पर गौर करता है, उसे मालूम होता है कि मेरी जिंदगी की गर्ज खुदा शनासी है, और उस पर ईमान लाता और उसकी इबादत करता है, तब वो फराइज को अदा करता और नवाफिल को शनाख्त करता है। वो रूहानियत जो ईमान के बाद पैदा होती है, अब उसे तलाश करो कि कहाँ है। न मौलवियों में है, न राग सुनने वाले सूफियों में, ये गौशाला सूरत हैं रूहानियों से बेखबर होकर हजार साल तक भी अगर मग मारते रहें तो कुछ नहीं बनता। ये लहूम और दिमाग हैं, तकवा नहीं। फिर लहूम और दिमाग अल्लाह ताला को कैसे पहुंच सकता है? देरिया रू का ही इनकार करता है और कहता है कि कोई चीज है ही नहीं, और फिर कहते हैं कि हशर असाद कोई चीज नहीं। यहाँ रू तालीम पाकर आइंदा क्या करेगी? ये ख्याली बातें हैं, इनमें माकूलियत नहीं है। अगर रूह कोई चीज नहीं है तो फिर ये क्या बात है कि जिस्म पर जो फेल वाक़े होते हैं उनका असर अंदरूनी क़ुव्वतों पर भी पड़ता है। मसलन अगर मुकद्दमा रास पर चोट लग जाए तो इस फसाद के साथ इंसान मजनून हो जाता है या हाफिजा जाता रहता है। मजनूनों की रूह तो वही है, नक्श तो जिस्म में है। जिस्म का अगर अच्छा इंतजाम न रहे तो रूह बेकार हो जाती है। वो बदूं जिस्म किसी काम का नहीं है, इसलिए हमेशा जिस्म की मोहताज है। हिस का इंतजाम उमदा हो, रूहानी हालत भी अच्छी होगी। छोटे बच्चे में क्यों इतनी समझ नहीं होती कि वो अवाकिबुल उमूर को समझ सके? इसकी वजह यही है कि इनमें अभी कुवा का नश्वोनुमा कामिल नहीं हुआ होता। इसी तरह पेट में जो नुतफा जाता है, किसी को कुछ मालूम नहीं कि रूह इसके साथ कहाँ से चली जाती है। इसके साथ ही दरअसल एक मख्फी कुवत चली जाती है जो इंबिसात और निशात का बायस होती है। इसी तरह अनाज में भी वही कैफियत चली आती है। इसी की तरफ मौलवी रूमी ने इशारा करके कहा, हफ्त सद अफ्ताद कालिब दीदाम हम जो सब्जा बारहा रोईदाम। नाफहम और कोर मग्ज लोगों ने इस शेर को तनासुक पर हमल कर लिया है और कहते हैं कि इसे तनासुक साबित होता है, मगर उनको मालूम नहीं कि ये दरअसल तगैरात नुतफा की तरफ ईमा है। यानी जिन तगैरात से नुतफा तैयार होता है उसको इस शेर में जाहिर किया गया है। शायद बहुत थोड़े आदमी ऐसे होंगे जिनको ये मालूम हो कि नुतफा बहुत से तगैरात से बनता है। जिस अनाज से नुतफा बना है, नुतफे की हालत में आने से पहले अल्लाह ताला ने उसको बहुत से तगैरात में डाला है और फिर उसको महफूज रखा है, क्योंकि वो दरख्ती का नुतफा है। अपने वक्त पर वो पीसा भी जाता है और उससे रोटी भी तैयार की जाती है, लेकिन वो महफूज का महफूज चला आता है। आजकल नुतफे के मुतालिक जो तहकीकात हुई है तो डॉक्टर कहते हैं कि इसमें कीड़े होते हैं, ये अलग अम्र है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि असल में वो एक कुव्वत है जो बराबर महफूज चली आती है। मुमकिन है कि जो कुछ डॉक्टरों ने समझाओ वह इसी कुव्वत को समझाओ। हर अनाज के साथ इंसानियत का खासा नहीं, बल्कि वो जौहर काबिल अलग ही है और उसको वही खाता है जिसके लिए वो मुकद्दर होता है और वो उसी दिन के लिए मुकद्दर होता है। वो नुतफा जिसमें रूहानियत की जड़ है बढ़ता जाता है, यहां तक कि मुजगा अलका वगैरह छह हल्कों में से गुजरता है और इन छह तगैरात के बाद सुमान शाना और खल्कन आकर अलमोमिनून आयत 15 का वक्त आता है। अब इस आखिरी तब्दीली को नशा उखरा कहा है, ये नहीं कहा सुमा अनजलना फी है रूहन आखर। इसे साफ मालूम होता है कि वो बाहर से कोई चीज नहीं आती। अब इसको खूब गौर से सोचो तो मालूम होगा कि रूह का जिस्म के साथ कैसा आबदी ताल्लुक है। फिर ये कैसी बेउदगी है जो कहा जावे कि जिस्म का रूह के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये किस कदर जबरदस्त सबूत रूह की हस्ती का है। इसको कोई मामूली निगाह से देखो तो देखे तो और बात है, लेकिन माकूलियत और फलसफे से सोचे तो इससे इनकार नहीं कर सकता। इसी तरह एक और बात भी काबिल गौर है कि दुनिया में कभी कोई शख्स कामयाब नहीं हुआ जो जिस्म और रूह दोनों से काम न ले। अगर रूह कोई चीज नहीं तो एक मुर्दा जिस्म से कोई काम क्यों नहीं हो सकता? क्या इसके सारे कुवा और आजा मौजूद नहीं होते? अब यह बात कैसी सफाई के साथ समझ में आती है कि रूह और जिस्म का ताल्लुक जबकि आबदी है, फिर क्यों किसी एक को बेकार करार दिया जावे? फरमाया दुआ के लिए भी यही कानून है कि जिस्म तकलीफ उठावे और रूह गुदाज हो, और फिर सब्र और इस्तिक़लाल से अल्लाह ताला की हस्ती पर ईमान लाकर उसने जन से काम लिया जावे। हर एक काम के लिए जमाना होता है और सईद उसका इंतजार करते हैं। जो इंतजार नहीं करता और चश्मे जदन में चाहता है उसका नतीजा निकल आवे, वो जल्दबाज होता है और बाब मुराद नहीं हो सकता। मेरे नजदीक ये भी मुमकिन है और होता है कि दुआ के जमाने में इब्तला के तौर पर और भी इब्तला आ जाते हैं। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइल को फिरौन के गुलामी से नजात दिलाने के लिए आए तो उनको पहले मिस्र में फिरौन ने यह काम दिया हुआ था कि वह आधा दिन ईंटें पाथा करें और आधा दिन अपना काम किया करें, लेकिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको नजात दिलाने की कोशिश की तो फिर शरीरों की शरारत से बनी इसराइल का काम बढ़ा दिया गया और उन्हें हुक्म मिला कि आधा दिन तुम ईंटें पाथो और आधा दिन घास लाया करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब यह हुक्म मिला और उन्होंने बनी इसराइल को सुनाया तो वो बड़े नाराज हुए और कहा कि मूसा खुदा तुमको वो दुख दे जो हमको मिला है। और भी उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को बद दुआएं दी, मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको यही कहा कि तुम सब्र करो। तौरात में ये सारा किस्सा लिखा है कि जो जो मूसा अलैहि सलाम उन्हें तसल्ली देते थे वो और भी बड़ा फरुख्ता होते थे। आखिर यह हुआ कि मिस्र से भाग निकलने की तजवीज की गई और मिस्र वालों के कपड़े और बर्तन वगैरह जो लिए हुए थे वो साथ ही ले आए। जब हजरत मूसा अलैहि सलाम कौम को लेकर निकल आए तो फिरौन ने अपने लश्कर को लेकर उनका ताकुब किया। बनी इसराइल ने जब देखा कि फिरौनियों का लश्कर उनके करीब है तो वो बड़े ही मुस्तरिब हुए। चुनाचे कुरान शरीफ में लिखा है कि उस वक्त वो चिल्लाए और कहा, इन्ना लमुद्रकून, अशआरा आयत 62। ए मूसा, हम तो पकड़े गए, मगर मूसा अलैहि सलाम ने जो नबूवत की आंख से अंजाम को देखते थे उन्हें यही जवाब दिया, कल्ला इन्ना माया रब्बी सयादीन, अशआरा आयत 63, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। तो रात में लिखा है कि उन्होंने यह भी कहा कि क्या मिस्र में हमारे लिए खबरें न थीं। और ये इस्तराब इस वजह से पैदा हुआ कि पीछे फिराउन का लश्कर और आगे दरियाए नील था, वो देखते थे न पीछे जाकर बच सकते हैं और न आगे जाकर, मगर अल्लाह ताला कादिर मुख्तदिर खुदा है, दरियाए नील में से उन्हें रास्ता मिल गया और सारे बनी इसराइल आराम के साथ पार हो गए, मगर फिरौनियों का लश्कर गर्क हो गया। सैयद अहमद खान साहब इस मौके पर लिखते हैं कि यह जवार भाटा था, मगर हम कहते हैं कि कुछ हो, इसमें कोई शुबा नहीं हो सकता कि यह अजीम शान मौजा था जो ऐसे वक्त पर अल्लाह ताला ने उनके लिए राह पैदा कर दी। और यही मुत्तकी के साथ होता है कि हर जैक से चाल लहू मखरजा, सूरह तलाक आयत 3। गरज ऐसा होता है कि दुआ और उसकी कबूलियत के जमाने के दरमियानी औकात में बसा औकात इब्तला पर इब्तला आते हैं और ऐसे ऐसे इब्तला भी आ जाते हैं जो कमर तोड़ देते हैं, मगर मुस्तकिल मिजाज सईद उल फितरत इन इब्तलाओं और मुश्किलात में भी अपने रब की इनायतों की खुशबू सूंघता है और फरासत की नजर से देखता है कि इसके बाद नुसरत आती है। इन इब्तलाओं के आने में एक सिर यह भी होता है कि दुआ के लिए जोश बढ़ता है, क्योंकि जिस जिस कदर इस्तरार और इस्तराब बढ़ता जाएगा उसी कदर रूह में गुदाजश होती जाएगी और ये दुआ की कबूलियत के असबाब में से है। बस कभी घबराना नहीं चाहिए और बेसब्री और बेकरारी से अपने अल्लाह पर बज़न नहीं होना चाहिए। ये कभी भी ख्याल करना चाहिए कि मेरी दुआ कबूल ना होगी, ये नहीं होती। ऐसा वहम अल्लाह ताला की सिफत से इनकार हो जाता है कि वो दुआएं कबूल फरमाने वाला है। कभी ऐसा भी होता है कि इंसान एक अमर के लिए दुआ करता है मगर वो दुआ उसकी अपनी नवाकफी और नादानी का नतीजा होती है, यानी ऐसा अमर खुदा ताला से चाहता है जो इसके लिए किसी सूरत में मुफीद और नाफे नहीं है, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को तो रद्द नहीं करता लेकिन किसी और सूरत में पूरा कर देता है। मसलन एक जिम्मेदार जिसको हल चलाने के लिए बैल की जरूरत है, वो बादशाह से जाकर एक ऊंट का सवाल करे और बादशाह जानता है कि उसको दरअसल बैल देना मुफीद होगा और वो हुक्म दे दे कि उसको एक बैल दे दो। वो जिम्मेदार अपनी बेवकूफी से कह दे कि मेरी दरख्वास्त मंजूर नहीं हुई, तो उसकी हमाकत और नादानी है, लेकिन अगर वो गौर करे तो उसके लिए यही बेहतर था। इसी तरह पर अगर एक बच्चा आग के सुर्ख अंगारे देखकर माँ से मांगे तो क्या मेहरबान और शफीक माँ ये पसंद करेगी कि उसको आग के अंगारे दे दे। गरज बाज औकात दुआ की कबूलियत के मुतालिक ऐसे अमूर भी पेश आते हैं जो लोग बेसब्री और बदजनी से काम लेते हैं, वो अपनी दुआ को रद्द करा लेते हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि उसकी कबूलियत के जमाने में और भी दराजी हो जाती है। बनी इसराइल इसी वजह से 40 बरस तक अर्ज मुकदस में दाखिल होने से महरूम हो गए कि जरा जरा सी बात पर शौकियों से काम लेते थे। मैं कहता हूं कि जिस तरह बनी इसराइल से गुलामी के दिनों में वादे किए गए थे, इसी तरह पर इस उम्मत के लिए भी एक मामासलत है, उन पर भी एक गुलामी का जमाना आने वाला था और अब वही हालत गुलामी की है, क्योंकि हर पहलू और हर रंग में मुसलमानों की हालत तनाजुल में है। इसी मामासलत के लिहाज से अल्लाह ताला ने मसीह मौत की तबलीग का जमाना 40 साल तक रखा है। जिस तरह पर मूसा अलैहि सलाम ने वो जमीन न पाई थी बल्कि यशू बिन नून ले गया, इसी तरह पर कबूलियत की अर्ज मुकदस इन मौलवियों के नसीब मालूम नहीं होती जो आए दिन मुखालिफत और शरारत में बढ़ते जाते हैं और नहीं सोचते कि उनको क्या कहा गया था, क्या तालीम मिली थी और अब उन्होंने उस पर किस हद तक अमल किया है। फरमाया, मुझे बड़ी हैरत और बड़ा ही ताज्जुब होता है कि ये लोग मुसलमान कहलाते हैं, ये कुरान शरीफ को पढ़ते हैं, ये अहादीस के दर्स देते हैं और मुसलमानों के लीडर और सरगरो बनते हैं, दीन के असूल समझने और उन पर अमल करने के मुद्दे ही हैं, मगर मेरे मामले में इन सारी बातों को छोड़ देते हैं और कुछ परवाह नहीं करते। क्या कुरान शरीफ के नसूस के बिना पर मेरे दावे को सोचें और मेरी निस्बत कोई राय देते हुए इस बात का लिहाज रखें कि हम जो कहते हैं खुदा ताला के खौफ से कहते हैं या अपने नफसानी अगराज और जोशों को दरमियान रखकर कहते हैं। अगर खुदा तरसी और तकवा से काम लेते तो ला तख्फ मा लैसा लका बिही इल्म पर अमल करते, और जब तक मेरी किताबों को पूरे तौर पर न पा लेते और मेरे पास रहकर मेरे तर्ज अमल को न देख लेते कोई राय न देता। मगर उन्होंने कबल अज़ मर्ग वावेला शुरू कर दिया और खुदा ताला के कलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादों की कुछ भी परवाह न की, इन सब को पसे पुश डाल दिया। कम अज कम तकवा का तरीक तो ये था कि वो मेरे दावे को सुनकर फिक्र करते और झटपट इनकार न कर देते, क्योंकि मैंने उनको ये कहा था कि खुदा ने मुझे मामूर किया है, खुदा ने मुझे भेजा है। वो देखते कि क्या जिस शख्स ने अपना आना खुदा के हुक्म से बताया है वो खुदा के नुसरतें और ताईदें भी अपने साथ रखता है या नहीं। मगर उन्होंने निशान पर निशान देखे और कहा कि झूठे हैं। उन्होंने नुसरत पर नुसरत और ताईद पर ताईद देखी, लेकिन कह दिया कि सहर है। लेकिन कह दिया कि शेर है। मैं लोगों से क्या उम्मीद रखूं जो खुदा ताला के कलाम की बेहरमती करते हैं। खुदा के कलाम के अदब का तकाजा तो यह था कि उसका नाम सुनते ही ये हथियार डाल देते, मगर ये और भी शरारत में पड़े। अब खुद देख लेंगे कि अंजाम किसके हाथ में है। मैं देखता हूं कि मेरे बुलाने के दरअसल यही लोग मुहर्रिक हुए हैं और मेरी बासत के असबाब में से ये बड़ा सबब है, क्योंकि जिस कदर लोग नसरानी और बेदीन हुए हैं वो दरअसल मौलवियों का कसूर है। जब किसी ने उनसे सवाल किया और कोई बात उनसे पूछी तो उन्होंने झटपट यही फतवा दे दिया कि ये वाजिबुल कत्ल है, काफिर हो गया, बेदीन हो गया, उसको मार डालो। इतराज करने वालों ने जब ये हालत देखी तो उन्होंने यही समझा कि इस्लाम की अकायद से हकीकत ऐसे ही कमजोर और बूढ़े हैं कि वो अब माकूलियत के आगे नहीं ठहर सकते। मग बस उन्होंने यही बेहतर समझा कि ऐसे दीन को छोड़ दें। हजारों हजार लोग पाए जाते हैं जिनके मुर्तद होने की वजह यही मौलवी हो गए हैं। ये बात के वो सवाल क्यों करते हैं बड़ी सहल है। ये लोग 1300 बरस के बाद चूंकि पैदा हुए हैं, इस कदर बौद्ध जमाना की वजह से गोया यह तारीकी का जमाना कहना चाहिए, इसलिए उनको हक हासिल है कि जो बात समझ में ना आए पूछें। लेकिन सवाल करने पर उन्होंने उनको गुमराह कर दिया। चाहिए तो यह था कि उनको माजूर और वाजिब रहम समझ कर नरमी से पेश आते और उनको समझाते, मगर उल्टा उन्होंने उनको इस्लाम से बेजार कर दिया। ऐसी हालत में अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है कि मैं इस्लाम की तालीम की खूबियां जाहिर करूं और फिर इन खूबियों का अमली सबूत और उसकी तासीरों को दिखाऊं। बस इस वक्त हमारे दो काम हैं। अव्वल ये कि निशानों के साथ जो अल्लाह ताला दिखा रहा है ये साबित किया जावे कि मुजीब और नाते खुदा हमारा ही है जो हमारी दुआओं को सुनता और उनके जवाब देता है, और दूसरे मजाहब के लोग जो खुदा पेश करते हैं वो अल्लाह यरजो इलैहिम कौलन तुआद 90 का मिस्टाक है। इसकी वजह यह है कि बवजह उनके कुफर और बेदीनी के उनकी दुआएं मा दुआउल काफिरीन इल्ला फी जलाल की मिस्टाक हो गई हैं, सूरह राद आयत 15। वरना अल्लाह ताला तो सबका एक ही है, मगर इन लोगों ने उसकी सिफात को समझा ही नहीं। बस याद रखो कि हमारा खुदा नातिक है, वो हमारी दुआएं सुनता है। हमारी जमात को खुदा ताला से सच्चा ताल्लुक होना चाहिए और उनको शुक्र करना चाहिए कि खुदा ताला ने उनको यूं ही नहीं छोड़ा, बल्कि उनकी ईमानी कुव्वतों को यकीन के दर्जे तक बढ़ाने के वास्ते अपनी कुदरत के सदा निशान दिखाए हैं। क्या कोई तुम में से ऐसा भी है जो ये कह सके कि मैंने कोई निशान नहीं देखा? मैं दावा से कहता हूं कि एक भी ऐसा नहीं जिसको हमारी सोबत में रहने का मौका मिला और उसने खुदा ताला का ताजा बताजा निशान अपनी आंख से ना देखा हो। हमारी जमात के लिए इसी बात की जरूरत है कि उनका ईमान बढ़े, खुदा ताला पर सच्चा यकीन और मारिफत पैदा हो, नेक आमाल में सुस्ती और कसल ना हो, क्योंकि अगर सुस्ती हो तो फिर वजू करना भी एक मुसीबत मालूम होता है कि जाए कि वो तहज्जुद पढ़े। अगर हमारे सालिया की कुव्वत पैदा ना हो और मुसाबकत अल खैरात के लिए जोश ना हो तो फिर हमारे साथ ताल्लुक पैदा करना बेफायदा है। हमारी जमात में वही दाखिल होता है जो हमारी तालीम को अपना दस्तूर अमल करार देता है और अपनी हिम्मत और कोशिश के मुताबिक इस पर अमल करता है। लेकिन जो माज नाम रखाकर तालीम के मुताबिक अमल नहीं करता, वो याद रखे कि खुदा ताला ने इस जमात को एक खास जमात बनाने का इरादा किया है, और कोई आदमी जो दरअसल जमात में नहीं है, माज नाम लिखाने से जमात में नहीं रह सकता। इस पर कोई ना कोई वक्त ऐसा आ जाएगा कि वो अलग हो जाएगा। इसलिए जहां तक हो सके अपने अमाल को उस तालीम के मुताहत करो जो दी जाती है। अमाल परों की तरह हैं, बगैर अमाल के इंसान रूहानी मदार के लिए परवाज नहीं कर सकता और उन आला मकासिद को हासिल नहीं कर सकता जो उनके नीचे अल्लाह ताला ने रखे हैं। परिंदों में फहम होता है, अगर वे इस फहम से काम न लें तो जो काम उनसे होते हैं ना हो सकें। मसलन शहद की मक्खी में अगर फहम ना हो तो वो शहद नहीं निकाल सकती, और इसी तरह नामा बर कबूतर जो होते हैं उनको अपने फहम से किस कदर काम लेना पड़ता है, किस कदर दूर दराज के मंजिलें वो तय करते हैं और खतूत को पहुंचाते हैं। इसी तरह परिंदों से आज जरूरी है कि आदमी अपने फहम से काम ले और सोचे कि वो काम मैं करने लगा हूं ये अल्लाह ताला के आकाम के नीचे और उसकी रिजा के लिए है या नहीं। जब ये देख ले और फहम से काम ले तो फिर हाथों से काम लेना जरूरी होता है, सुस्ती और गफलत ना करे। हाँ, ये देख लेना जरूरी है कि तालीम सही हो। कभी ऐसा भी होता है कि तालीम सही होती है लेकिन इंसान अपनी नादानी और जहालत से या किसी दूसरे की शरारत और गलत बयानी की वजह से धोखा में पड़ जाता है। इसलिए खाली और जहनों की तहकीक करनी चाहिए। मसलन मैंने देखा है कि आर्या और ईसाई एतराज कर देते हैं कि कुरान शरीफ में कसमें क्यों खाई हैं, और फिर अपनी तरफ से आशिया चढ़ाकर उसको अजीब अजीब एतराजों के पराए में पेश करते हैं। हालांकि अगर जरा भी नेक नीयती और फहम से काम लिया जावे तो ऐसा एतराज बेहुदा और बेसूद मालूम होता है, क्योंकि कसमों के मुताबिक ये देखना जरूरी होता है कि कसम खाने का असल मफहूम और मकसद क्या होता है। जब उसके फलासफी पर गौर किया जावे तो फिर यह खुद ब खुद सवाल हल हो जाता है और ज्यादा रंज उठाने की नौबत ही नहीं आती। आमतौर पर यह देखा जाता है कि कसम का मफहूम यह होता है कि कसम बतौर कायम मकाम गवाह की होती है, और ये मुसल्लम बात है कि अदालत जब गवाह पर फैसला करती है तो क्या ऐसे ये मुराद होती है कि वह झूठ पर फैसला करती है, या कसम खाने वाले की कसम को एक शायद सादिक तस्वर करती है। ये रोजमर्रा की बात है। जहालत या तासब से एतराज करना और बात है, लेकिन हकीकत को मद्देनजर रखकर कोई बात कहना और। अब जबकि ये आम तरीके है कि कसम बतौर गवाह के होती है, फिर ये कैसी सीधी बात है कि इसी असूल पर कुरान शरीफ की कसमों को देख लिया जावे कि वहां इससे क्या मतलब है। अल्लाह ताला ने जहां कोई कसम खाई है तो इससे ये मुराद है कि नजरी अमूर की इस बात के लिए बदी को गवाह ठहराता है, जैसे फरमाया व समाए जात रजे वल अर्ज जात सदे इन्नहू लकौलुन फसलुन अत्तारिक आयत 12-14। अब ये भी एक कसम का महल है। नादान कुरान शरीफ के हकायक से नावाकिफ और नाबलद अपनी जहालत से ये एतराज कर देता है कि देखो जमीन की या आसमान की कसम खाई, लेकिन उसको नहीं मालूम कि इस कसम के नीचे कैसे कैसे मारे मौजूद हैं। असल यह है कि अल्लाह ताला वही इलाही के दलायल और कुरान शरीफ की हकानियत की शहादत पेश करनी चाहता है और उसको इस तर्ज पर पेश किया है। अब इस कसम की कसम पर एतराज करना बजुस नापाक फितरत या ब्रीद व तबा इंसान के दूसरे का काम नहीं, क्योंकि इसमें तो अजीम शान सदाकत मौजूद है। सही है, फितरत की आम शहादत के जरिए अल्लाह ताला कलाम इलाही और नजूल वही की हकीकत बताना चाहता है। समा के माने बादल की भी हैं जिससे मीह बरसता है। आसमान और जमीन में ऐसे ताल्लुकात हैं जैसे नरो मादा में होते हैं। जमीन में भी कुएं होते हैं लेकिन जमीन फिर भी आसमानी पानी के मोहताज रहती है। जब तक आसमान से बारिश ना हो जमीन मुर्दा समझी जाती है और उसकी जिंदगी इस पानी पर मुनहसर है जो आसमान से आता है। इसी वास्ते फरमाया अलमू अन्नल्लाह युहयिल अर्ज़ बाद मौतिहा अलहदीद आयत 18। और यह भी देखा गया है कि जब आसमान से पानी बरसने में देर हो और इंसा के बारह हो तो कुओं का पानी भी खुश्क होने लगता है, और उन अय्याम में देखा गया है कि पानी उतर जाता है, लेकिन जब बरसात के दिनों और मई बरसने शुरू हों तो कुओं का पानी भी जोश मार कर चढ़ता है, क्योंकि ऊपर के पानी में कुव्वत जाज़बा होती है। अब ब्रह्मो सोचें कि अगर आसमानी पानी नाजल होना छोड़ दे तो सब कुएं खुश्क हो जाएं। इसी तरह पर हम ये मानते हैं कि अल्लाह ताला ने एक नूर कल्ब हर इंसान को दिया है और उसके दिमाग में अक्ल रखी है जिससे वह बुरे भले में तमीज करने के काबिल होता है। लेकिन अगर नबूवत का नूर आसमान से नाजल ना हो और यह सिलसिला बंद हो जावे तो दिमागी अकलों का सिलसिला जाता रहे और नूर कल्ब पर तारीकी पैदा हो जावे और वह बिल्कुल काम देने के काबिल ना रहे, क्योंकि यह सिलसिला इसी नूर नबूवत से रोशनी पाता है जैसे बारिश होने पर जमीन की रोईदगी निकलनी शुरू हो जाती है और हर तुम पैदा होने लगता है, इसी तरह पर नूर नबूवत के नजूल पर दिमागी और जहनी अकलों में एक सफाई और नूर फरासत में एक रोशनी पैदा होती है। अगरचे ये आला कदरे मरातब होती है और इस्तेदाद के मुताबिक हर शख्स फायदा उठाता है, खावे समर को महसूस करे या ना करे, लेकिन ये सब कुछ होता इसी नूर नबूवत के तुफैल है। गरज इस कसम में नजूल मई की वही की जरूरत को एक आम मुशाहदा के रूप से साबित किया है कि जैसे आसमानी पानी के न बरसने की वजह से जमीन मर जाती और कुओं का पानी खुश्क होने लगता है, यही कानून नजूल वही के मुतालिक है। रजउन पानी को कहते हैं, हालांकि पानी जमीन पर भी होता है लेकिन आसमान को जाते रजे कहा है। इसमें यह फलसफा बताया है कि असली आसमानी पानी ही है, चुनाचे कहा गया है, बारां के दर लताफते तबश दरेग ने दर बाग लाला रोय दो दर शोरा बूम खस। जो कैफियत बारिश के वक्त होती है वही नजूल वही के वक्त होती है। दो किस्म की तबीयतें मौजूद होती हैं, एक तो मुस्तैद होती हैं और दूसरी बरीद। मुस्तैद तबीयत वाले फौरन समझ लेते हैं और सादे का साथ दे देते हैं, लेकिन बरीद और तबाह नहीं समझ सकते और वो मुखालफत पर उठ खड़े होते हैं। देखो मक्का मुअज्जमा में जब वही का नजूल हुआ और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुदा ताला की वही उतरने लगी, तो अबू बकर रजी अल्लाह अनु और अबू जहल एक ही सरजमीन के दो शख्स थे। अबू बकर ने तो कोई निशान भी ना मांगा और मुजर्रद दावा सुनते ही आमन्ना कहकर साथ हो लिया, मगर अबू जहल ने निशान ब निशान देखे मगर तकदीर से बाज ना आया और आखिर खुदा ताला के कहर के नीचे आकर जिल्लत के साथ हलाक हुआ। गरज खुदा ताला की वही हर किस्म के तबीयतों को बाहर निकाल देती है, तैयब और खबीस में इम्तियाज करके दिखा देती है। वो बाहर का मौसम होता है, वो बाहर का मौसम होता है उस वक्त मुमकिन है कि कोई तो शगुफ्तगी के लिए ना निकले, लेकिन जो कुछ होगा वही बरामद होगा। नेक और सईदुल फितरत अपनी जगह पर नमूदार होते हैं और खबीस अलग, और इससे पहले वो मिले जुले होते हैं जैसे गंदम और बगाट के दाने मिले हुए तो रहते हैं, लेकिन जब जमीन से निकलते हैं तो दोनों अलग नजर आते हैं। मालिक गंदम की हिफाजत करता और बगाट को निकालकर बाहर फेंक देता है। बस नजूले वही के सबूत के लिए अल्लाह ताला ने यह मुशाहदा पेश किया है, जिसको नादान अपनी नादानी और जहालत से एतराज के रंग में पेश करता है, हालांकि इसमें एक अजीम शान फलसफा रखा हुआ है। इसीलिए वस्समाए जात रजय वल अर्ज जात सदे कहकर फरमाया, इन्नहु लकौलुन फसलुन अत्तारे का 12:14। जो कलाम इलाही के लिए बोला गया है ये एक नजरी अमर था, इसके सबूत के लिए बदी अमर को पेश किया है। जैसे इमसा के 12 के वक्त जरूरत होती है मीठी, इसी तरह उस वक्त लोग रूहानी पानी को चाहते हैं। जमीन बिल्कुल मर चुकी है, ये जमाना जहरुल फसाद फिल बर्रे वल बहर का मिस्ताक हो गया है। जंगल और समंदर बिगड़ चुके हैं, जंगल से मुराद मुशरिक लोग और बैर से मुराद अहले किताब हैं, जाहिल और आलिम भी मुराद हो सकते हैं। गरज इंसानों के हर तबके में फसाद वाकई हो गया है, जिस पहलू और जिस रंग में देखो दुनिया की हालत बदल गई है। रूहानियत बाकी नहीं रही और ना उसकी तासीरें नजर आती हैं। अखलाकी और अमली कमजोरियों में हर छोटा बड़ा मुबतला है, खुदा परस्ती और खुदा शनासी का नामो निशान मिटा हुआ नजर आता है। इसलिए इस वक्त जरूरत है कि आसमानी पानी और नूर नबूवत का नजूल हो और मुस्तैद दिलों को रोशनी बख्शे। खुदा ताला का शुक्र करो, उसने अपने फजल से इस वक्त उस नूर को नाजिल किया है, मगर थोड़े हैं जो इस नूर से फायदा उठाते हैं। मैं देखता हूँ कि खुदा ताला नसूस कुरानिया और हदीसिया के बिना पर दलाइल अक़लिया और निशानात बैना से सिलसिले की सदाकत को जाहिर कर रहा है। तालीम को अगर इंसान देखे तो साफ मालूम हो सकता है कि सच्ची तालीम यही है जिसको अक्लमंद कबूल करेंगे। इस्लामी तालीम ही एक ऐसी तालीम है कि जिसको आदल कहते हैं, इस तालीम में एक कशिश मौजूद है। हजरत अक्दस ने इरशाद फरमाया, सूरह फातिहा में जिस खुदा को पेश किया है दुनिया का कोई मजहब उसे पेश नहीं करता। ईसाइयों ने जो खुदा दिखाया है उसके मुकाबला में हम कहते हैं कि लम यलिद वलम यूलद। हाँ, अगर मरियम के पेट में वाकई खुदा आ गया था तो चाहिए था कि वो पेट ही में मरियम को वास करते और एक लंबा लेक्चर देते जिसको दूसरे लोग भी सुन लेते। इस सारे कादत लेक्चर को सुनकर सारे शुबहात दूर हो जाते और खान खा मानना पड़ता, बल्कि और भी खुदाई का सबूत मिलता। अगर पेट ही में मौजे दिखाने शुरू कर देते तो और भी मामला साफ हो जाता और खान खा मानना पड़ता, मगर बजाय इसके कि उसकी अलोहियत की कोई अजमत साबित होती, हर पहलू से उसका नक्स और कमजोरी ही साबित होती है। मरियम का निकाह हमल में किया गया जो शरण जायज न था, और एक निकाह से तीन कस्में तोड़ी गईं, यानी माँ ने ऐद किया था कि निकाह ना करूंगी, और खुद मरियम ने भी ऐद किया हुआ था। और इन सारी बातों के अलावा एक और एतराज है जिसका जवाब ईसाई नहीं दे सकते। ईसाई मजहब में दूसरी शादी मना है, लेकिन यूसुफ की पहली बीवी थी। और भी इस किस्म के एतराजात हैं। यहूदियों की किताबों को पढ़ो, वो क्या हकीकत बयान करते हैं, और हमको तो ऐसे एतराज करते हुए भी अफसोस और हया माने होती है। पादरी इमादुद्दीन ने अपनी किताबों में रहाब, तमर और बिनत सबा की बाबत लिखा है कि वो अच्छे चाल चलन की औरतें न थीं। ऐसे खानदान में जन्म लिया, फिर खुद ही जवाब देता है कि वह ऐसा करीम है कि ऐसे लोगों में भी जन्म लेने से दरेग नहीं किया। मगर एक दानिशमंद गौर करे कि ये कैसा वसत अखलाक है। लेकिन हमारा खुदा लमजलेद है, और किस कदर खुशी और शुक्र का मकाम है कि जिस खुदा को हमने माना और इस्लाम ने पेश किया है, वो हर कामिल, हर तरह कामिल और खुदूस है, और कोई नक्स उसमें नहीं। वो खूबियां कामिल तौर पर अल्लाह ताला में पाई जाती हैं, और सारी सिफात उनको बयान करती हैं। चुनांचे अव्वल ये कि उसमें ज़ाती हुस्न है, और उसके मुताबिक लैसा कम इसलिए ही शायन फरमाया, कुल हुवल्लाह अहद फरमाया, और कहा कि वो असमद है, बेनियाज है, ना वो किसी का बेटा है, ना कोई उसका कोई बेटा है, ना उसका कोई हमता और हमसर है। कुरान शरीफ को गौर से पढ़ो तो मालूम होगा कि जा बजा उसका हुसन दिखाया गया है, फिर दूसरी कशिश एहसान की है। ईसाइयों ने खुदा के एहसान का क्या नमूना दिखाया, यही कि अपने बच्चे को फांसी दे दिया। मौलवी साहेब जिक्र किया करते हैं कि एक बाप अपने बेटे को कह रहा था कि खुदा ने जान को कैसे प्यार किया कि अपना बेटा फांसी दे दिया। लड़का ये सुनकर डर गया और भाग गया, और जब उससे डरने की वजह पूछी गई तो उसने यही कहा कि जब खुदा ने यह हरकत की तो तुझसे क्या उम्मीद हो सकती है। इंसान खुदा से मोहब्बत करता है तो फिर उसको सबसे मुकदम कर लेता है। हजारों भेड़ बकरियां मौजूद हैं, अगर मोहब्बत का यही निशान है और मारने वाले अजीज होते हैं, तो क्या यह चीजें खुदा को इंसान से अजीज तरीन होती हैं? मगर ऐसा नहीं, लाखों चीजें हैं इंसान के लिए वो हलाक करता है। पानी में कीड़े रखे हुए होते हैं, यह भी खुदा ताला की हिकमत है, क्योंकि बसीज चीजें हलाक कर देती हैं। गरज ये असल सही नहीं है जो समझ लिया जाता है कि वो जिससे प्यार करता है उसको हलाक करता है। सच्चा खुदा जिससे प्यार करता है उसकी ताईद करता है, क्योंकि वो खुदा फरमाता है, कातब अल्लाह लागले बन्ना ना बरसली अल मुजादला आयत 22। ईसाई अपने खुदा की निस्बत ऐसा नमूना पेश नहीं करते, और हकीकत में नहीं है, क्योंकि मसीह का अपना नमूना यह है कि दुश्मनों के हाथों में सख्त दलील हुए, और उस वक्त वो अगर खुदा थे या खुदा के बेटे थे तो दुश्मनों को खतरनाक जिल्लत पहुंचनी चाहिए थी, मगर बजाय दुश्मन कामयाब हो गए और उन्होंने पकड़ कर सलीब पर चढ़ा ही दिया। लेकिन हमारा खुदा ऐसा नहीं है, उसने अपने रसूलों के हर मैदान में नुसरत की और कामयाब किया। अब दूसरे मजहब इसका नमूना कहाँ चलाएं?